हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। 3:16:23 न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हात्म गोपम गोप्ता वृषः स्वर हनेन स सुनृतेन तर्हि एव नक्षति शिवस्तव देवपन्था लोको ग्रहिष्यत् ऋषभस्य हि तत् प्रमाणम्। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। सो इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा ना करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है, इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा पर ब्रह्म को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनो येन तथा स पन्था, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए, अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहें तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चार मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गोवों और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मण तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर भी इसकी पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज हैं, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने सिर के ऊपरी भाग, अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर, बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। इस तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग तथा ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों जो लेबर है, श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्यों के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करे। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करे। भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया। यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता तब सारा समाज नष्ट हो जाता है। नंक्षति शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्तुत की गई है वह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावना में पूर्णतया स्थिर हो। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखां विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी वांछा कल्प तरुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो जो प्रसंग चल रहे थे फैन ये वाला पंखा बंद। सो जो प्रसंग चल रहा है कि चार कुमार गए वैकुंठ में भगवान के दर्शन के अभिलाषा से और छह द्वार क्रॉस कर लिए उन्होंने, सातवें पे जय विजय ने रोक लिया और जब रोक लिया उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुम में बहुत ईर्ष्या है, तुम यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो, जाओ नीचे वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए, तो नीचे गिर गए, है ना। सो जब वो श्राप दे रहे थे तो भगवान वहां पर चल के लक्ष्मी जी के साथ आए और आए जब तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे जो ये द्वारपाल हैं जय विजय, उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, और अच्छा किया आपने सजा दी, मैं तो ब्राह्मणों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ब्राह्मणों के मुख से मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, है ना, और अगर कोई अगर मेरे अपनी जो भुजा है अगर वो ब्राह्मणों का अनादर करे इसको भी काट के फेंक दूंगा, तो आपने अच्छा किया, लेकिन आप मुझ पे एक कृपा करें। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मुझ पे एक कृपा करें कि आप इनको वापस भगवत धाम आने का, आप जब ये अपनी सजा भुगत लें तो आप प्लीज ऐसी कृपा करें मुझ पर कि ये वापस वैकुंठ में प्रवेश कर सके, है ना। मतलब कमाल हो गया, नहीं भगवान कह रहे हैं कि मुझे फेवर कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, है ना। ऐसा दृष्टांत कहाँ मिलने वाला है, है ना, कहाँ मिलने वाला है ऐसा दृष्टांत, तो कह रहे हैं मुझ पर कृपा कर। तो देखने में लग रहा है कि भगवान चार कुमारों की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उनसे बहुत प्रभावित हैं और जय विजय से रुष्ट हैं, गुस्से में है कि भाई तुमने गलत काम किया, लेकिन एक्चुअली में कुछ और चल रहा है। भागवतम में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य लीला गंभीर कोटि समुद्र है थे। चैतन्य महाप्रभु की भगवान की जो लीला है, भगवान जो कहते हैं करते हैं, वो करोड़ों समुद्र से भी ज्यादा गहरी है। की लागी की करे के ना पारे पूजीते, वो क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कोई जान नहीं सकता। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें समुद्र के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था, तो बता रहे थे कि समुद्र की डेप्थ जो गहराई कितनी है, और जो साइंटिस्ट आज तक समुद्र की जो रहस्य हैं, जो समुद्र के गर्भ में रहस्य छुपे हुए, निकाल नहीं पाए आज तक। तो एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, मैंने पता नहीं कहाँ पे देखा या सुना था, उसने एक्सप्लेन किया कि जो समुद्र के गर्भ में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, लेकिन हम निकाल नहीं सकते उसको। तो किसी ने बोला यार ड्रिल कर लो, निकाल लो। उसे कहा ड्रिल तो हम समुद्र की सतह से ही, तो ड्रिल की जो मशीन है उसको नीचे भेजेंगे, लेकिन इतना गहरा है समुद्र कि समुद्र की सतह से जब हम ड्रिल करने के लिए भेजते हैं तो उसी तरह है जैसे हम एक नूडल से एक प्लेट को छेद करते हैं। नूडल से प्लेट को छेद कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो कह रहे हैं कितनी पावरफुल ड्रिल मशीन कर दो, कितने किलोमीटर नीचे, हो ही नहीं सकता। तो जो वैज्ञानिक है कितनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन समुद्र के गर्भ को, समुद्र के गर्भ में क्या है उसको नहीं समझ सकते, है ना। अरे तुम चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है 5-7-10 किलोमीटर, उसको पहले तो ढूंढ लो उसके अंदर क्या है, उसके बारे में कुछ कह रहे हम नहीं कर सकते, है ना। फनी बात है। सो ये एक समुद्र की बात है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की जो लीला है वो कोटि समुद्र, ऐसे करोड़ों समुद्र होंगे, उससे भी अथाह है, उससे भी ज्यादा गहरी है। तो कौन समझ सकता है? एक उदाहरण से हम बात करते हैं कि सनातन गोस्वामी, हमें पता है, एक बार आए थे पुरी में। जब पुरी आए तो जब रास्ते से आ रहे थे, वृंदावन से जब पुरी आ रहे थे, तो जंगलों से होते हुए आए, तो उनको हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी, तो सारे शरीर में उनको खुजली हो गई, फोड़े हो गए, पस निकलने शुरू हो गई। तो जब पुरी पहुंचे तो जब भी चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे, चैतन्य महाप्रभु गले लगा लेते थे। तो सनातन गोस्वामी को बहुत दुख होता था कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन भगवान मेरे मुझे आलिंगन करते हैं, उनका शरीर गंदा हो जाता है। तो बहुत दुखी महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने चर्चा की जगदानंद पंडित से। उन्होंने बोला कि आप प्लीज बताओ मैं क्या करूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जगदानंद पंडित ने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ वापस, यहाँ पर मत रुको, यार चारों तरफ गन फैलाया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनको दिक्कत हो रही है आपसे, तो आप यहाँ पर मत रुको, वापस वृंदावन चले जाओ, अच्छा विचार है आपका। तो जब नेक्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु आए और सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपके चरणों में एक निवेदन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलो क्या कहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है आप बार बार मेरा आलिंगन करते हो, मुझे बहुत दुख होता है, आपका शरीर गंदा हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों आलिंगन करता हूँ आपका। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आपका आलिंगन आपके लिए नहीं कर रहा, मैं आपका आलिंगन अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ, कि मैं शुद्ध भक्तों का, अच्छे वैष्णवों का अगर आलिंगन करूँगा तो मेरा शुद्धिकरण होगा, आपका इसमें कुछ रोल नहीं है। और अगर एक चीज़ और समझ लो कि मैं आपको अपने बच्चे की तरह देखता हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, तो अगर बच्चा माँ की गोदी में अगर मल मूत्र विसर्जन करता है तो माँ को घृणा नहीं होती, अच्छा लगता है, ठीक है, बच्चा हेल्दी है, सेहतमंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं आप प्लीज मुझे जाने दो। मैंने जगदानंद पंडित से भी चर्चा की थी, वो भी कह रहे हैं हाँ ठीक है वापस चले जाओ यही अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु को आगे गुस्सा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो जग्गे की हिम्मत कैसे हो गई, तुम कहां वो कहां, तुम्हारे सामने बच्चा है वो, तुम मेरे लिए पूजनीय हो और जग्गे ने तुम्हें जाके मतलब ऐसे बोल दिया, बहुत गलत किया उसने ये कहके। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा यहीं पे रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मेरे लिए पूजनीय हो उसको बहुत खुश होना चाहिए, नहीं? सनातन गोस्वामी को बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत उदास हो गए। सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को बोला, हरिदास ठाकुर को बोला कि चैतन्य महाप्रभु मुझे अंतरंग नहीं समझते, इसीलिए मेरी तारीफ कर रहे हैं। कितना भाग्य है जगदानंद पंडित का कि उसको डांट रहे हैं। किसको डांटते हैं, किसको डांटते हैं, जो बहुत क्लोज है, जिससे पता है किसको कुछ भी बोला भागेगा नहीं, नहीं? तो उन्होंने कहा कि असली जो सौभाग्य है मेरा नहीं है, असली सौभाग्य जगदानंद पंडित का है। जगदानंद पंडित को वो कृपा मिली है कि चैतन्य महाप्रभु उसको अपना इतना क्लोज समझते हैं कि कभी भी डांट सकते हैं, कभी भी उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे तो पुचकार रहे हैं कि चल बेटा अच्छा है आराम से पढ़ा रहा है कोई बात नहीं, भाग ना जाऊं। यही दृष्टांत हम इस प्रसंग में लेके आते हैं कि चार कुमारों ने श्राप तो दे दिया, श्राप दे दिया चार कुमारों ने, लेकिन अब पछता रहे थे। और जब भगवान ने कहा अच्छा किया श्राप देके, तो उनको संतोष नहीं हुआ, उनको घबराहट हो गई। अब चार कुमार जो है ये जो भगवान को बोल रहे हैं वचन, जो भगवान को ये श्लोक बोल रहे हैं, ये घबराहट के मारे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पा रहे कि भगवान ने ऐसी बात बोली तो क्यों बोली। लग रहा है हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और फीलिंग आ रही है। लग रहा है जय विजय को की ताड़ना कर रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और फीलिंग आ रही है। तो उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्होंने माना इस बात को कि हम नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो और इसके पीछे आपका क्या मंतव्य है, हम असमर्थ हैं। और ये चार कुमार बोल रहे हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, पहली संतान है, सुपर इंटेलिजेंट है ना। भगवान को छोड़ो, जो जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है उसी की बात समझना मुश्किल हो जाता है ना। यार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो गया उसकी वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों बोल रहा है, नहीं समझ सकते, नहीं समझा जा सकता। और अपने आप अपनी इस असमर्थता को एडमिट करने में, स्वीकार करने में भलाई है। जब तक हम अपनी इस असमर्थता को नहीं समझ लेंगे, हम कभी भी वैष्णो की और भगवान की महानता को नहीं समझ सकते। सो भगवान ने बोला कि आपने अच्छा किया, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ब्राह्मणों की। तो अब क्योंकि चार कुमार डरे हुए थे, घबरा गए थे, तो उन्होंने बोला कि आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा करके दिखा रहे हो। जब आप श्रील प्रभुपाद व्याख्या में लिख रहे हैं कि तात्पर्य में कि जब आप प्रकट हुए धरा धाम पे, तो आपने ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया, आप यज्ञ कर रहे थे, आप गांवों का जो गायें हैं उनका पालन पोषण कर रहे थे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य के पहली लाइन में एक्सप्लेन किया रीजन कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं आदर्श स्थापित करने के लिए। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि कई बार जरूरत नहीं भी हो तो भी जो महाजन है ना, महाजन जो है वो एक आदर्श स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। क्यों? लोकस तत् अनुवर्तते, ताकि जो जनसाधारण है वो उस आदर्श का पालन कर सके। अगर कोई आदर्श नहीं रहेगा, कोई गोल नहीं रहेगा, तो जनसाधारण करेगा क्या? उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देगा, पूरी सामाजिक व्यवस्था, जो धार्मिक रीति रिवाज है, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे देखो वो इतना महान व्यक्ति था, उसने तो किया नहीं। तो जब उसने नहीं किया तो हम क्यों करें? और कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, कि अर्जुन प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ करने के लायक कोई चीज है, मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी वस्तु की इच्छा है। ओ ये चीज नहीं थी, मिल गई, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए जिससे कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो करने लायक काम है, जो करने चाहिए वर्ण आश्रम के अनुसार, उसको मैं करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरे लोग भी उसको करना छोड़ देंगे। तो चार कुमार कह रहे हैं कि हम तारीफ के लायक नहीं है, हमने तो यहां पर आकर अच्छी बली एक मतलब व्यवस्था चल रही थी, हमने आके अड़ंगा लगा दिया बीच में। नहीं तो कौन श्राप देता है वैकुंठ में? वैकुंठ का मतलब ही कुंठा नहीं है जहां पर, और वहां पर आकर हमने श्राप दे दिया, और कौन सा आपको इनवाइट किया था, खुद ही तो आए थे तुम, और आकर वहां पर सारी व्यवस्था खराब कर दी। तो चार कुमारों ने ये एक्सेप्ट किया अपने हृदय में कि हम लोग रजोगुण तमोगुण सतोगुण के मिक्सचर में अभी बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उदाहरण स्थापित करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, आप हमारी तारीफ कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप बहुत इज्जत करते हो, बहुत सम्मान करते हो, और हमारे लिए आप ये भी करने को तैयार हो, वो भी करने को तैयार हो, लेकिन हम असलियत ये है कि हम इसके योग्य नहीं हैं। और एक्चुअली में अगर हम देखें, भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं। भगवान इस धरा धाम पे आए, क्यों आए? ये बताने के लिए कि उनका प्रभुत्व सर्वत्र है, सर्वत्र कृष्ण का प्रभुत्व है, ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जो भगवान कृष्ण के अनुगत ना हो। एकला ईश्वरा कृष्ण और सम नृत्य, सब नौकर हैं, केवल एक ही स्वामी कृष्ण। तो ये दिखाने के लिए कि मेरा प्रभुत्व है कृष्ण धराधाम पे, और कृष्ण गुरु स्वीकार करते हैं। कृष्ण की श्वास वेद है, कृष्ण की वाणी धर्म है, कृष्ण को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए, सिखाने के लिए कृष्ण ने गुरु स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किया, और एक चैतन्य महाप्रभु की असंख्य लीलाएं हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि उनकी लीलाओं का पूरी तरह वर्णन करना कि उसके बारे में सोचना एक्चुअली में ऑफेंस है, अपराध है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि मैं एक कुछ छू रहा हूं, टच कर रहा हूं भगवान की लीलाओं, लीला रूपी समुद्र को, एक बूंद को मैं छू रहा हूं अपने शुद्धिकरण के लिए। तो हम भी चैतन्य महाप्रभु की एक प्रसंग को छू रहे हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रह रहे थे तो अलग अलग भक्त जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करते थे, आमंत्रित करते थे अपने घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही मित भूख थे, बहुत कम खाते थे, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे उनको जबरदस्ती उनकी प्लेट में 10, 20, 50 लोगों के खाने के योग्य भोजन डाल देते थे और जबरदस्ती करते थे चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु बहुत संकोचवश जितना खा सकते थे फिर बोलते थे नहीं खाया जाना, भाई क्या करूं, प्लीज आप समझें, मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता। चैतन्य महाप्रभु उनके प्रेम का प्रेम से अभिभूत हो जाते थे, लेकिन वो बार बार उनको रिक्वेस्ट करते थे और नहीं खा सकता मैं। तो ये प्रेम का आदान प्रदान चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक वहां पर रामचंद्रपुरी आ गए, और रामचंद्रपुरी जो है वो श्रील माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उनके गुरु के गुरु भाई हैं। रामचंद्रपुरी में बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन एक तकलीफ थी उनके साथ में कि दोष दृष्टि थी। जो भी चीज देखते थे, जिस व्यक्ति से मिलते थे, कोई घटना देखते थे, उसमें से दोष निकाल लेते थे, यह ऐसे क्यों हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसने, गर्मी का मौसम था, चैतन्य महाप्रभु बैठे थे अपने कुटिया में, तो गर्मी के मौसम में चींटियां आ जाती हैं। तो उन्होंने बोला देखो चींटियां हैं, जरूर तुमने मीठा खाया, मीठा खाते हैं दो चार कण दाने नीचे गिरी जाते हैं, नहीं क्रम्स। तो उन्होंने बोला ये जो चींटियां हैं उसी मिठाई को लेने के लिए आई हैं, अपने आप को तुम कहते सन्यासी हो, तुम्हें पता है सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है, सन्यासी को ज्यादा इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, तो तुम अपने आप को बदलो, देखो ऐसा करना अच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बिल्कुल सही बात है। चैतन्य महाप्रभु पहले ही मित भूख है, पहले ही कम खा रहे हैं। लोग जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वैताचार्य, गोपीनाथ मिश्रा, जगदानंद पंडित, ये सारे बहुत उनको फोर्स करके पहले से ही खिला रहे हैं। लेकिन जब रामचंद्रपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आपको कम खाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जितना थोड़ा सा ले रहे थे उसको भी आधा कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नहीं बोला कि नहीं नहीं मैंने मिठाई नहीं खाई, ये चींटियां गर्मी के कारण ऊपर आ रही है, या मैं तो प्रभु पहले से ही बहुत कम खा रहा हूं, आपको गलत फहमी हो गई है, ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ रहो, आप देखो तो आपको पता चलेगा आपको गलतफहमी हो गई है, सच्चाई कुछ और है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कोई भी सफाई पेश नहीं की। जैसे ही रामचंद्रपुरी ने बोला कि तुम ज्यादा खा रहे हो, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने फौरन स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ज्यादा खा रहा हूं, हाँ मुझ में कमी है और आपका बहुत धन्यवाद इस कमी को बताने के लिए, मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। ये बहुत ही शिक्षाप्रद घटना है। चैतन्य महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपकी गलती हो तभी एक्सेप्ट करो, गलती नहीं है आपकी, आप परफेक्ट आचरण कर रहे हो। लेकिन अगर कोई सीनियर वैष्णव आया, गुरु आए और उन्होंने आपको बोला कि आप में ये कमी है, ये तकलीफ है, इसको सुधारो, तो बहस नहीं करनी चाहिए, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, सफाई पेश नहीं करनी चाहिए, उसको बहुत ही विनम्रता से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए और भरसक प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि हाँ आप प्रभु सही कह रहे हो और वैसे ही चलते जा रहे हो कि चलो मैंने सामने प्रतिरोध नहीं किया लेकिन मैंने चेंज भी नहीं किया। तो मैंने प्रतिरोध नहीं किया, मैं बहुत विनम्र हूं। एक्चुअली में जो विनम्रता है वो प्रतिरोध नहीं करना तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल करना कि हाँ मैं वास्तव में मुझ में ये कमी है और मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ये वास्तविक विनम्रता है। तो जो विनम्रता चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण के द्वारा दिखा रहे हैं, हमें उसका कुछ अंश अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हमें कभी भी किसी वैष्णव से कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सीनियर वैष्णव बोलेंगे तो मानूंगा, जूनियर वैष्णव बोलेंगे तो नहीं मानूंगा, उसको बोलूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सच्चाई ये है कि सबसे जूनियर हम ही हैं, ये सच्चाई है। हमें किसी को अपने से जूनियर नहीं समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्तों को अपने समकक्ष एक फ्रेंड की तरह मान सकते हैं और वैसे हमें हरेक भक्त को अपना सीनियर ही मानना चाहिए और उनको पूरा आदर देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने शरीर छोड़ने से पहले भक्ति सिद्धांता को भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर को कुछ निर्देश दिए थे। उसमें से एक निर्देश ये था कि शिष्य मत बनाना। लेकिन हम सब जानते हैं भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर ने जगह जगह गए और बहुत सारे शिष्य बनाए। तो किसी ने बोला उनको कि आपके गुरु ने बोला था शिष्य मत बनाना, आप तो उनकी बात मान ही नहीं रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि मैं शिष्य कहां बना रहा हूं, ये जितने भी भक्त हैं ये सबको मैं अपना गुरु मानता हूं, मैंने शिष्य बनाया नहीं है। इस तरह से हमें भी हरेक वैष्णव को, जितने भी वैष्णव हैं, हमें उनको अपना गुरु, अपना प्रभु, प्रभु बोलना काफी नहीं है, प्रभु मानना आवश्यक है। हमें उनको अपना गुरु मानना चाहिए, अपने से सीनियर मानना चाहिए और यथासंभव हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कभी भी अपनी सेवा के लिए किसी को एंगेज नहीं करना चाहिए, किसी से सेवा लेनी नहीं चाहिए, हमेशा सेवा दूसरों की करनी चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का मंतव्य है जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना महादेन कीर्तने सदा हरे। अगर हम इस सिद्धांत का पालन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के इस दृष्टांत को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम वैष्णव अपराध से बच के रहेंगे, हम क्रोध से बच पाएंगे, दूसरे वैष्णवों को हम किसी भी प्रकार जाने अनजाने से दुख देने से बच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है।